क्रिश्चन में 25 का 65 लाख, क्रिश्चन में 25 का 65 लाख, एज में 57 55 दो, यही का पेज नंबर दो, आखिरी पैराग्राफ है। अभी तुम बच्चे सावन बनने की प्रतिज्ञा करते, उस प्रतिज्ञा की ही यादगारी राखी बंधु में रक्षा सूत्र से बांधा गया। तो कौन बांधता है रक्षा सूत्र? भक्ति मार्ग में कौन बांधता है? लोग तो आजकल बांधने लगे, पहले कौन बांधता था? ब्रह्म में बांधता था रक्षा सूत्र में। ये यादगार कहाँ का है? ये संगम युग का यादगार है कि जो ब्राह्मण चोटी है वो भी ब्रह्मा मुखवंशा वाली है, चोटी का ब्राह्मण जो रक्षा सूत्र में बांधता है विकारों की रक्षा। तो ये रक्षा का बंधन भी इस समय का यादगार है। अच्छा, ब्राह्मण तो पहले राखी बांधते थे, जो आगमन तो अंत में, तो आदि अंत का तो ये यादगार हुआ और बाद में पहले जब हमें राखी भी मिलते थे और अब क्या चल रहा है दुनिया में? अब चोकरियां बांधने लगी हैं खर्चे के लिए, रक्षा सूत्र तो क्या रक्षा करेंगी हैं? बहने रक्षा करेंगी क्या? बहने रक्षा सूत्र बांधता था तो इसलिए तो ब्राह्मण रक्षा कर सकता है। तो यज्ञ के आदि का यादगार है, परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं वो चोटी का ब्राह्मण है, वो चोटी का ब्राह्मण यज्ञ के आदि में भी वो विशेष पार्ट बजाता है। तेज छाक में निकलती है, रक्षा के सूत्र में बनती है। ऐसे ही जो आज में हुआ तो अंत में भी होता है, फिर श्रेष्ठ आत्माएं निकलती है उस ब्राह्मण चोटी के द्वारा। रक्षा का सूत्र बांधती है यानी बंधन में बनती है। तो ये इस समय का यादगार है। ये जो छोकरियाँ बांधती है ये किसका यादगार है? बहने भाइयों को बांधती है ये कहाँ का यादगार है? छोकरियाँ माने कन्याएं, संगम युग का यादगार कैसे? हाँ तथा कथित तो ब्रह्मा कुमारियाँ दो बांधती है किस लिए? खर्च के लिए कि पैसा मिल जाए, बाकी कोई विकारों से रक्षा के बंधन में बांधती बांधती नहीं है। तो ये भी कहाँ का यादगार? ये भी संगम का यादगार। आगे तो 2500 की राशि मिलती थी, खर्चा नहीं होता था ज्यादा उसमें, थोड़ी सी रंगीन हुई और उसने एक धागा बांध दिया, 1 रुपए की ढेर सारी राखियां बन जाती थी। एक ब्राह्मण सैकड़ों को राखी बांध देता था, रक्षा के बंधन में बांधता था, और अब तो पाई पैसे की बात नहीं है। तो वो पाई पैसे की राखी ब्राह्मण लोग जाकर के राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी रीजनेबल बनाते हैं, क्यों ये दिखावा क्यों? ये राखी फैशनेबल बनाने का दिखावा क्यों? हर चीज ज्यादा मिलेगी, वास्तव में है अभी की बात। ये सब बातें कहाँ की है? वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, रक्षा के सूत्र में बांधने वाला कौन है? बाप। तो तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कद विकार में नहीं जाएंगे। आपसे हम विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरण नदी में गोते खाते हैं, अब तुमको मैं क्षीर सागर में ले चलता हूँ। सागर कोई है नहीं, ये तो भेंट में कहा जाता है विषय सागर की भेंट में क्षीर सागर। विषय सागर में क्या होता है? विषयी निकारी कीड़े मकोड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं। तुमको शिवालय में ले जाता हूँ, वैश्वालय से निकाल शिवालय में ले जाता हूँ, वहाँ अथा हो गए। अभी ये अंतिम जन्म है, आत्माएं पवित्र बन। क्या तुम बाप का कहना नहीं मानोगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार बनने के अब क्या करूं? इस जन्म में तो विकार में न जाओ। वो जन्म जन्मांतर की पाप भी मुझे याद करने से बस होंगे। मैं पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी दो। बाप कौन सी गारंटी करते हैं? शिवालय में ले जाने की, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने की गारंटी करता हूँ। लेकिन कब? जब तुम ये गारंटी लो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे और किसी से संग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका संग करते हैं, चाहे आंखों से, चाहे किसी भी इंद्रिय से, चाहे एक इंद्रिय से, चाहे 10 इंद्रियों से, जिसका भी संग करेंगे उसका रंग लगेगा। तो संग करने से कामना जरूर पैदा होगी, और जब इच्छा पैदा होगी तो याद बन जाएगी। तो मां में कम याद करो, मां में कम याद करो, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान भी न रहे। सन्यासी में भी कोई बहुत पीछे होते हैं, सबके ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, उनकी भी क्या विशेषता बताई? ब्रह्मज्ञानियों में भी जो सबके ब्रह्मज्ञानी होंगे, ब्रह्म ज्ञानी मान ब्रह्म के ज्ञानी। ब्रह्मा का ज्ञानी क्या था? उन्होंने भी बैठो बैठो शरीर छोड़ा, तो ब्रह्म ज्ञानी में भी कोई पक्के होते हैं। यहाँ तुमको तो बात समझाते हैं, पावन बन करके जाना है। वो ब्रह्म ज्ञानी शरीर छोड़ते हैं फिर भी तो दुनिया में जन्म तो लेना ही पड़ता है। अब तुमको तो पावन बन करके जाना है। वो तो अपनी मत पर चलते हैं। हाँ, बाप ने तो नहीं बताया कि तुम ब्रह्म या ब्रह्मा को याद करो, तो बैठे बैठे शरीर छोड़ने का तो लक्ष्य नहीं बताया। तीसरा भी ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी फिर कहाँ जाते हैं? वापस इसी दुनिया में उनको आना पड़ता है, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। स्थूल शरीर नहीं तो सूक्ष्म शरीर का बंधन लगता जरूर है, और जिनको सूक्ष्म शरीर का बंधन होता है वो आत्मा भी अपना कोई न कोई लगाव कहीं न कहीं रह जाता है, जिसके कारण उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो मुक्ति तो नहीं हुई, इस दुनिया के बंधनों से मुक्ति नहीं हुई, और जीवन मुक्ति तो फिर होगी ही क्या? तो वो मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जाते, आते फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण में चला गया। कौन? ब्रह्मज्ञानी। वो समझते हैं कि निर्वाण धाम में माना परम धाम चला गया। वास्तव में निर्वाण धाम कोई जा नहीं सकता। निर्वाण धाम तो हो ही जा सकता है जो निसंकल्प स्टेज में टिक जाए। सूक्ष्म शरीर भी उनको मिलता है जिनकी कोई आस रह जाती है, लगाव रह जाता है, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। वास्तव में निर्वाण धाम तो हो ही जा सकता है जिसका कोई कोई आस कोई लगाव इच्छा मात्र अविद्या हो जाए। ब्रह्मा बाबा की क्या विशेष इच्छा थी कि मैं जाकर के कृष्ण बनूंगा? हाँ, नई दुनिया में जन्म लूंगा। अब राजधानी स्थापन हुई की हुई, लेकिन दिल्ली में राजधानी स्थापन नहीं हुई, लेकिन आस तो उनकी पक्की रही। तो जो आस पक्की थी वो आस भी उनको पूरी करनी पड़े, तो वो सूक्ष्म शरीर का कार्य जो रहता है उसके द्वारा पूरा करना पड़ता है। उनके फॉलोअर समझते हैं कि वो निर्वाण धाम गए, तो वाणी से परे तो वो जा नहीं सकते, फिर भी किसी में प्रवेश करके उनको वाणी चलानी पड़े, एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। ये झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम तो संगम युग पर बैठे, और सब मनुष्य हैं कहाँ? कलयुग में। ये किस लिए? ये कैसे कहें कि हम संगम युग पर हैं और सब मनुष्य कलयुग में हैं? हाँ, संगम युग तब तक है जब तक साकार में पाप प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना करता है, तब तक संगम युग है। और जब पाप ही नहीं मिला तो संगम युग आएगा। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, वो है आसुरी संप्रदाय। कलयुग में होते हैं आस
वास्तुदी संप्रदाय जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं को, देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना, यहां बदली हो करके और धर्मों में कन्वर्ट हो गई। कौन है देवी देवता? सनातन धर्म की ही आत्माएं हैं, यहां पहले बदली हुई, बदली मन चेंज हो गई। पहले क्या थी? पहले और धर्मों की थी, आसुरी धर्मों से फिर ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होकर के देवता बनी, बदली हो गई। फिर बाद में क्या होता है उनका असर? फिर द्वापर शुरू होता है, फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे? कहां सतगुरु? सतगुरु में तो एक तरह का तो गार्डन है नहीं, फर्स्ट गार्डन, सेकंड क्लास गार्डन, थर्ड क्लास गार्डन, 8-9 गार्डन हैं। तो वो जो नंबर वार गार्डन हैं, उनमें जगह कौन भरेंगे? तो जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो वहां जगह भरेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे। उन दूसरे धर्म वालों में भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हैं तो अच्छे अच्छे बेचारे, लेकिन संघ के रंग में वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, किसके पास? तुम्हारे किसके लिए कहा है? बाप के लिए कहा, बाप ने बाप के लिए कहा। हाँ, तुम्हारे शब्द बोलाई है जिसके लिए वाणी चली खास, ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली और जिसको बोला गया तुम्हारे, वो जरूर उसको इमर्ज करके बोला गया। तो जिसको इमर्ज, जिस आत्मा को इमर्ज करके बोला गया तुम्हारे लिए, या तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं तो यज्ञ के आदि में भी जरूर आए होंगे और अंत में भी जरूर आएंगे, आते होंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, तो बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? कौन जांच करेंगे? दूसरे लोग देखने वाले झट जांच करेंगे, यहां दूसरे धर्म वाले कैसे आ जाते हैं? इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, जब इमरजेंसी पड़ती है तो बहुत जांच की जाती है। यहाँ कोई गोष्ठी तो नहीं हो रही है देश के खिलाफ, तो दुनिया की बात बताइए, फिर यहाँ की भी बात है। और यहाँ तो अभी इमरजेंसी पड़ी नहीं, पड़ी थी एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो इमरजेंसी पड़ी, तो झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से उनको छोड़ देते हैं। यहाँ कौन से पैसे हैं? हाँ, क्योंकि वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, पैर से मिलने से छोड़ भी देते हैं। तो जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी भी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था, तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बन रहे हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई को बहुत धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। कैसा धनवान? ज्ञान धन से धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। कितना कल्याण करना होता है, बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। ऊंची चढ़ने वाले कौन होंगे? काय में ऊंची चढ़ेंगे, कहाँ चढ़ेंगे? ऊंची चढ़ के कहाँ जाएंगे? जी बाप किया, अरे वो तो सब चढ़ते हैं ऊंचे, बाप की याद में कौन सा नहीं चढ़ते हैं। हाँ ऊंच चढ़ जाएंगे माना माला में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी है। पुरुषार्थ करो लेकिन चिंता नहीं करनी है, चिंतन तो करो कि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, चिंता हो जाती है ना। चिंता नहीं करनी है, क्या करना है? चिंतन करो, मनन चिंतन करो, क्योंकि तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो भी फल निकलता है समझा जाता है। कल पहले मिसल हूँ, बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, तुम मेहनत करते रहो, अगर नहीं बनते हैं तो क्या कहेंगे? सब बंदरों आदि को थोड़े ही चाय आदि पीना सिखलाते हैं। कोई कोई बंदर होते हैं होशियार, तो उनको चाय आदि पीना सिखलाते हैं। उनमें भी जातियां होती हैं। हाँ बंदरों में भी जातियां होती हैं। हाँ जिनको सिखलाते हैं यहाँ भी ऐसे हैं। कोई कोई बंदर यहाँ भी ऐसे हैं जिनको चाय पीना सिखलाते हैं। हैं? चाय में क्या होता है? चाय में तो चाय काली काली चाय पत्ती डाली जाती है और थोड़ा सा दूध डाला जाता है। हाँ थोड़ी चीनी मिठास भी हो, बंदरों को तो मिठास अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी ऐसे हैं जिन्हें चाय आदि पीना सिखलाते। इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो। हाँ कोई तो माथा कम खपाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। कोई जाति मात्र खपाते हैं। बाप जब विदेशी बने हैं, बाप विदेशी बन करके आए हैं तो बच्चे भी तो कोई विदेशी बनते होंगे। विदेशी विदेशी ही है तो स्वदेशी बाद में निकल आएंगे, तो उनमें भी उन विदेशियों में भी वैरायटी है। कोई तो ठेठ विदेशी है और कोई थोड़े थोड़े कम विदेशी हैं, नेपाल आदि भूटान आदि की तरफ से ज्यादा नजदीक है। हाँ बात करो उसके, तो कोई होशियार होते हैं तो उनको चाय आदि पीना सिखलाते हैं। कोई तो उसे चाय पीने में कोई तुम्हारा कम माथा खपाएंगे, कोई जाती माथा खपाएंगे, उनको चाय पीना नहीं आएगी, मुंह बलबला के गरम गरम पी लेंगे, ओझल के दूर गिरेंगे जाके। चाह चाह जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। चाह होती है ना किसी चीज की, तो उसमें काली ज्यादा होती है और दूध, हाँ दूध ज्ञान का थोड़ा होता है। तो कोई तो कम माथा खपाते हैं और कोई माथा जास्ती खपाते हैं। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आ जाएगा तो फिर आएंगे, कब तक नहीं आएंगे हाँ। थोड़ा दुख होता है तो कहते हमें नहीं सीखना,
तो जब दुख जास्ती बढ़ता है तब फिर आएंगे, तुम्हारा वेद कुछ भी नहीं जाएगा। तुम बंदरों को भी जो चाय पीना दिखाते हो वो वेद नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बात बताना। क्या राइट बात हूँ? बाबा तो कहते हैं कि ससुर में देवताएं चाय नहीं पीते हैं, अगर चाय और दूध चाहिए तो वो पैसे भी ढेर सारे चाहिए। मम्मा वाला तो नहीं चाय पीते थे, बाबा पीते थे, बाबा पीते थे तुम्हें मालूम है? पूछा है तुमने किसी से? मम्मा वाला चाय नहीं पीते थे क्योंकि कर्म में फालो किसको करना है? फालो फादर मन ब्रह्मा को, ब्रह्मा को कर्म में फालो करना है। तो अगर वही चाय पीते होंगे तो बच्चे को जरूर जरूर पीएंगे, कुछ हो रहेंगे ही नहीं। तो किसी ने गलत बताई दिया आपको, इसलिए बता दिया होगा कि हमको फिर पीने को नहीं मिलेगी। मम्मा वाला चाय नहीं पीते थे, तुम्हारा काम है राइट बात बताना। राइट बात बताओ तो चाय से यहाँ राइट बात का क्या कनेक्शन है? चाय पीना कोई राइट बात है क्या है? चाय पीना तो बाबा की मुरली में राइट बात नहीं बताई, देवताएं चाय नहीं पीते हैं। तो तुम बच्चों को तो छोड़नी छोड़नी अगर पीते भी हैं तो दूध चढ़ाया जाता है लेकिन चाय तो नहीं चढ़ाई जाती, चाय नहीं चढ़ाई जाती। चाय तो कहाँ से आई? चाय तुमने किसने सिखाया? ये तो विदेशियों ने सिखाई। दूध तो प्योर चीज होती है, उसमें कुछ मिक्स करने की भी दरकार नहीं, चीनी भी न डालो तो भी कुछ न कुछ उसमें मिठास मिठास होता है ऑटोमेटिक है हाँ। लेकिन चाय में क्या करते हैं? चाय भी डालेंगे, तो वो दूध भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, हाँ चीनी भी डालेंगे, कोई कोई तो और मसाले भी मिलाते हैं चाय में, इलायची वगैरह। तो मिक्सचर ही बनाए देते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर माने मिला जुला। तो जैसे विचारी हो गया, एक चीज नहीं अनेक चीजों का मिश्रण हो गया। कोई राजा होते हैं जिनको एक ही कोई होती है, और कोई राजा होते हैं जिनको ढेर क्वींस होती है। तो प्रदर्शनी की बात के बारे में बाबा ने बताया कि प्रदर्शनी में ढेर के ढेर चित्र नहीं रखने चाहिए, इससे ढेर चित्र देखेंगे तो बुद्धि विचारी बन जाएगी। जैसे टू मैनी क्वींस का कहा है, जिस राजा को ज्यादा क्वींस होती है तो उसकी बुद्धि सारी कहाँ चली जाएगी, रानियों में चली जाएगी, तो राजकाज क्या चलाएगा, राजकाज ठप हो जाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ कि चाय बनाने में, मिक्सर की करने में, उसी में सारी चुस्की लेने में सारी बुद्धि चली गई। तो अब विचारी होने की बात है, अब विचारी बनना है, विचारी नहीं बनना। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं बाप जब विदेशी बन करके आए हैं तो हम भी क्यों थोड़ा विदेशी बने, माने नकल करते। हाँ, बंदर में नकल करने की बहुत आदत होती है, जो देखेगा तो करेगा जरूर। तो उनमें भी कोई कोई होशियार बंदर होते हैं तो बाबा उनको सिखाते हैं कि तुम भी चाय पीना सीख लो। वैसे तो शंकर को फॉलो करने के लिए बाबा ने मना किया हुआ, उन बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। लेकिन कोई कोई बंदर ही नहीं समझते हैं फॉलो फादर का मतलब क्या है। फॉलो फादर को माना कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, और डायरेक्शन में, डायरेक्शन में कर्णहार पार्ट को फॉलो नहीं करना है, लेकिन करावना।
13 नंबर के रजिस्टर में 58 पेज अर्थात मुरली का तीसरा पेज मध्य में बंदरों की बात चल रही थी, चाय पिलाने की, सिखाने की। तो इसमें बताया कि बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर वो तुम्हारे पास आएंगे सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? चाय पीना सीखने के लिए। तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा, यानी तुम जो बंदरों को चाय पीना सिखाते हो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हनुमान का क्या मिसाल है? हनुमान कौन सा जानवर था? बंदर था। उसने भी सेवा कुछ की कि नहीं की? हैं? उसने भी सेवा की। काय से सेवा की? उसकी सबसे बड़ी कहानी, जो कहानी बायोग्राफी आती है हनुमान बंदर की, उसने सबसे बड़ी सेवा कौन सी की जो बहुत प्रसिद्ध है? लंका में आग लगाई। तो ये भी तो सेवा हो गई ना, हैं? रावण के राज्य में अगर आग लगाने का कोई काम करे तो ये भी तो बाबा की सेवा हुई, ईश्वरीय सेवा हुई कि नहीं हुई? नहीं तो उसमें आग कौन लगाएगा? वो रावण की लंका भस्म कैसे होगी? तो तुम बंदरों को भी चाय पीना सिखा, ये भी तुम्हारा व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे, ऐसे बहुत कहते हैं। भगवान है तो जरूर। महाभारत लड़ाई का जब समय था तो भगवान था? भगवान कब होता है? सिर्फ जब पढ़ाई का पीरियड होता है तो भगवान भगवान के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता। कब प्रत्यक्ष होता है? जब पढ़ाई के बाद लड़ाई शुरू होती है। पहले पढ़ाई, पढ़ाई तो शांति के स्थान में होती है, पहाड़ों पे जाकर के कहीं शांति में पढ़ो, फिर लड़ाई होती है। तो वो पहाड़ों पे होती है, मैदान में होती है, मैदान। हिंदुस्तान में वो मैदान किधर है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में है? कौन सा है मैदान? कुरुक्षेत्र। तो उत्तर भारत में वो मैदान दिखाया गया है। उत्तर भारत में भी खास लड़न किया कौन से प्रदेश के लोग? उस यूपी के लिए बोला है, धर्म युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। अव्यक्तवाणी में ये बात बताई कि धर्म युद्ध को, वो यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो ये है महाभारी महाभारत लड़ाई का खेल। इस समय भगवान भी होता जरूर है, सिर्फ कौन सा भगवान था इस बात में हो गए। कृष्ण तो हो नहीं सकता, भगवान वो साकार रूपधारी कृष्ण तो सजा सजाया तो हो नहीं सकता। सादा चोले वाला होगा या चिकना चिकना टुकड़ा शरीर वाला होगा? साधारण। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर चिकना टुकड़ा था या साधारण था? गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा। एक तरफ कहते हैं राजाओं जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, अब दूसरी तरफ कह देते हैं साधारण था। तो बाबा तो कहते हैं मैं अति साधारण जैसे में आता हूँ। तो जब अति साधन शब्द बोल दिया तो उससे साबित होता है कि रूप स्वरूप में भी कोई असाधारण असाधारणता नहीं हो सकती। तो सिर्फ कौन सा भगवान था इस बात में मुझ गए। प्रश्न तो नहीं हो सकता, माना ब्रह्मा तो नहीं हो सकता। कृष्ण उसी फीचर्स से फिर तो सत्युग में ही आवेगा। किस फीचर से? जो सत्युग वाला कृष्ण होगा वो कहाँ आएगा? सत्युग में ही आएगा। और वही कृष्ण अंतिम जन्म में, फिर अंतिम 84 जन्म में ही आएगा, बीच में तो नहीं आ सकता। हर जन्म में फीचर तो बदलते रहते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो कोई जानता नहीं। तुम्हारा आखिरी में नाम निकलेगा, किसका? तुम्हारा। स्थापना हो रही है, आखिर में नाम निकलेगा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि छुपा रुस्तम बाद में खुले। जो गुप्त पुरुषार्थी होंगे वो बाद में प्रत्यक्ष होंगे, और जब प्रत्यक्ष होंगे तो उनके सामने और किसी की प्रत्यक्षता टिक नहीं सकेगी। वो इतने तीखे सितारे होंगे कि उनकी रोशनी के समय सामने और सब फीके पड़ जाएंगे। तो तुम्हारा आखिर में नाम निकलेगा, अभी तो स्थापना हो रही है, मेरी हैराजी करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया और एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है, कौन से चित्र में दिया हुआ है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया का चित्र कौन से चित्र में है? त्रिमूर्ति में। और नई दुनिया एक तरफ और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का गोला। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कहे की नई दुनिया की, यहाँ नई दुनिया पुरानी दुनिया की बात हो रही है कि सिर्फ ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है? हाँ, ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना होती है, लेकिन कौन से ब्रह्मा द्वारा? उस ब्रह्मा के द्वारा नहीं जिसके चित्र नहीं मिलते हैं। चित्र संपूर्णता के बनाए जाते हैं या अपूर्णता के? संपूर्णता के चित्र बनते हैं। तो कौन से ब्रह्मा के चित्र मिलते हैं? चतुर्भुजी ब्रह्मा, चार भुजा वाले ब्रह्मा के। चार भुजा का मतलब ही है कि ब्रह्मा सरस्वती वाली दो आत्माएं, दो भुजाएं शरीर छोड़ करके फिर किन्हीं दो ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। तो वो हुआ संपूर्ण चतुर्भुजी ब्रह्मा का स्वरूप। तो उसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना। बाकी ऐसे नहीं कि कोई दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा कोई नई दुनिया स्थापन हो गई, नहीं। तो कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। जब गायन है तो प्रैक्टिकल का गायन होगा या सिर्फ ऐसे ही कह दिया शंकर द्वारा विनाश? परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की तो कैसे होती है और कब होती है, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है, द्वारा मीडिया शंकर बनता है, कैसे विनाश होता है और वो कब विनाश होता है और किसका विनाश होता है, वो समझते हैं बाहर की दुनिया का विनाश होता होगा। वो स्थूल बम फटाके शंकर जी कराते होंगे। तो स्थूल बमों की बात नहीं है, ये कहाँ की बात है? ये है ब्राह्मणों की संगमी दुनिया की ही बात, स्थूल विनाश की बात नहीं है। जैसे हिंसक युद्ध की बात नहीं है वैसे स्थूल विनाश की भी बात नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। हमारा मुख्य चित्र कौन सा है? त्रिमूर्ति का, जिसमें ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। मुख्य चित्र क्यों है? समझाने के लिए। बाबा कहते हैं जब किसी को समझाओ तो पहले पहले क्या बात समझाओ, पहले से पहले बाप का परिचय दो। तो बाप का परिचय तो त्रिमूर्ति के चित्र में है। तो बच्चों से तो कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो जो रूहानी बच्चे हैं वो तो समझ लेते हैं कि मुख्य चित्र कौन सा है, त्रिमूर्ति का। और जो जिस्मानी बच्चे हैं वो फिर क्या करते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र को ही उड़ाई देते हैं। क्यों? अगर रखते भी हैं तो फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा का रख देते हैं। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। चित्र भी बनाएंगे तो तीनों चेहरे ब्रह्मा के बनाए देंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र भी एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों नहीं निकाले? तो एक्यूरेट चित्र कैसे होगा? जरूर साबित होता है कि ये त्रिमूर्ति जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, जब तक शिव इस धरा पर कार्य कर रहा है तब तक त्रिमूर्ति भी होनी जरूर चाहिए। क्योंकि नई दुनिया तो अभी स्थापन हुई नहीं, नई दुनिया स्थापन हो जाए तो फिर त्रिमूर्ति की बात भी न रही। तो मुख्य चित्र है तुम्हारा त्रिमूर्ति का, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में। कौन? ऊंच से ऊंच शिव बाबा। शिव बाबा ऊंचते ऊंचे उसे कहाँ पर है? त्रिमूर्ति में शिव बाबा कहाँ है? क्या वो जो बिंदु दिखा दिया है ऊपर ऊपर वाला, वो शिव बाबा? वो तो बाबा है ही नहीं, उसको तो बाप का चित्र कहेंगे, चित्र उसका बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो विचित्र है। बिंदु का चित्र कौन कोई खींच सकता है क्या? तो बिंदु का चित्र खींच ही नहीं सकते। हाँ शिव बाबा का चित्र खींचा जा सकता है। तो शिव बाबा कहाँ है त्रिमूर्ति में? त्रिमूर्ति में तो शंकर की जगह भी ब्रह्मा को बैठाया हुआ। अब ब्रह्मा तो खुद ही रचना है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ बड़ी माँ, तो रचना होती है रचयिता, वो तो माँ तो रचना है किसकी? बाप की रचना होती है। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन जिससे मिला, वो ज्ञान का बीज, बीज डालने वाला बाप हुआ, बीजारोपण करने वाला बाप हुआ, जिसने उस माँ के अंदर ज्ञान का बीजारोपण किया। तो जो आज में सो अंत में, माताएं भी बेहद की दो हैं, मुरली में बोला हुआ है। जब बेहद के बाप दो हैं, तो माताएं भी बेहद की दो हैं। कौन कौन सी हैं? हैं? ब्रह्मा, एक माता तो ब्रह्मा हो गई, दूसरी है सरस्वती, वो बेहद की माता हो गई। सरस्वती जो बीच में आई, पहले यज्ञ में न थी और न अंत तक रहती है, वो बेहद की माता हो गई। हाँ, आज में जो माता निमित्त बनी दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन देने के लिए मीडिया बनी, वो ही आदि माता, वो फिर अंत में फिर माता बन करके एडवांस नॉलेज में प्रत्यक्ष होती है। तो मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे ऊंचे है शिव बाबा। तो त्रिमूर्ति के चित्र में फिर शिव बाबा कौन हुआ है? वो तो त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, उसमें तो तीनों जगह दादा लेखराज ब्रह्मा टाइटल धारी का नाम रख दिया, वास्तव में वो तो ओरिजिनल ब्रह्मा है भी नहीं। ओरिजिनल ब्रह्मा कौन हुआ? क्योंकि तन पुरुष का है तो ब्रह्मा बड़ी माँ कैसे हो सकती? कौन ब्रह्मा? बड़ी माँ हो तो फीमेल का तन होना चाहिए या पुरुष का तन होना चाहिए? फीमेल का तन होना चाहिए। तो बड़ी माँ है तो जरूर बड़ा बाप भी होना चाहिए, दादा है तो दादी भी होना चाहिए। दादे का वर्षा लेना है ना। तो यज्ञ के आदि में माता भी थी और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी था, दादा भी था तो दादी भी थी, वही आदि वाले माता पिता फिर अंत में फिर प्रत्यक्ष होते हैं। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ओरिजिनल एक्यूरेट चित्र क्या हुआ? एक्यूरेट चित्र में त्रिमूर्ति में ऊंच से ऊंच बाबा कौन हुआ, जिसको हम कहें शिव बाबा? शिव बाप नहीं, वो तो सिर्फ आत्माओं, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं उसके साथ। तो शिव बाबा कौन हुआ त्रिमूर्ति के चित्र में? उसका स्वरूप क्या शिव बाबा है? शंकर प्रजापिता कहो, शंकर कहो, संगम की कृष्ण कहो, या नारायण बनने वाली आत्मा कहो, क्योंकि चारों ही शब्दों को बाबा ने बोल दिया नेक्स्ट टू शिव। तो इससे साबित होता है नेक्स्ट टू शिव तो एक ही होगा या चार होंगे? एक ही होगा। तो वो तो हुआ शिव बाबा। बाकी ब्रह्मा बाबा फिर कौन सा चित्र होना चाहिए? इसलिए एक मुरली में बोला है कि शिव बाबा जादूगर है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाई देते हैं। क्या नाम ब्रह्मा रखा, तन रख दिया पुरुष का। अच्छा चलो, ब्रह्मा पुरुष तन हो गया, फिर बाद में क्या किया? फिर पुरुष तन को बदल करके स्त्री चोला बना दिया। जब गायन है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो प्रैक्टिकल का गायन है या ऐसे ही झूठा गायन है? तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो माता और पिता ये तो संबंध अलग अलग हो गए ना, रूप तो अलग अलग होंगे ना, बाप दादा कंबाइंड है, एक ही तन में बाप दादा कार्य करते हैं इसलिए कंबाइंड हुए, लेकिन माता पिता कंबाइंड है नहीं, माता पिता अलग अलग होने चाहिए। तो एक्यूरेट चित्र होना चाहिए माता पिता का या ऐसे ही बना के रख दिया जाए और हम मान लें कि हाँ ये माता है? अरे दाढ़ी मूछ वाली भी कहीं माता होती है क्या? तो इसलिए मुलिम बोला, परंतु तन पुरुष का है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, ये है जगदम्बा। किसको बोला? ब्रह्मा को। वास्तव में तुम्हारी माँ बड़ी माँ है जगदम्बा, ये ब्रह्मा, परंतु तन पुरुष का। ये पग लगा दी तो जगदम्बा भी कह दिया, फिर तन पुरुष का है कह करके उसको कैंसिल भी कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जरूर जगदम्बा कोई और है। जो जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा है, उसके जरूर भक्ति मार्ग में चित्र भी होते होंगे। तो वो जगदम्बा कहो या उसको ब्रह्मा कहो, वो चित्र त्रिमूर्ति में होना चाहिए। किस स्थान पर? ब्रह्मा के स्थान। वो चतुर्भुजी ब्रह्मा भी है, क्योंकि उसने ब्रह्मा की सोल प्रवेश होकर के कार्य भी करती है, ब्रह्मा सरस्वती की सोल। तो वो हो गई बड़ी माँ ब्रह्मा। पहली मूर्ति शिव बाबा, दूसरी मूर्ति ब्रह्मा, और लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति है विष्णु। विष्णु को सबसे अंत में प्रत्यक्ष होना है ना, तो सबसे अंत में विष्णु आता है। तो विष्णु की मूर्ति कौन सी होगी? होगी या नहीं होगी? है विष्णु माना न्यूट्रल, न पुरुष विशेष स्वभाव वाला और न स्त्री विशेष स्वभाव वाला, दोनों में कंबाइंड होकर के पार्ट बजाने वाला। यज्ञ की आदि में भी उस आत्मा ने ऐसा ही पार्ट बजाया होगा, और अंत में भी दोनों तरफ तोड़ निभाने वाली आत्मा, लखफुल भी तो लाखफुल भी। शंकर जी अकेले कैसे फुल हैं? लाखफुल। ऐसे सिर्फ लाखफुल होने से सफलता नहीं मिल सकती, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। और ब्रह्मा जी लखफुल, तो अकेले लखफुल होने, अपने बच्चों के प्रति लखफुल होने से भी सफलता नहीं मिल सकती। या तो सारी दुनिया के प्रति लखफुल हो, विश्व कल्याणकारी हो, नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। तो ला और लव दोनों का बैलेंस चाहिए, वो होता है विष्णु। तो ऐसी भी कोई आत्मा है जिसमें 100% ला और लव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये ला और लव के कॉम्बिनेशन में सबका परसेंटेज एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई शंकर जैसी भी आत्माएं होती हैं जिनमें 100% या परसेंटेज में ला ही ला होता है। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनमें लव ही लव भरा हुआ है परसेंटेज में। तो कोई ब्रह्मा जैसी, कोई विष्णु जैसी, कोई शंकर जैसी। तो ऐसी विष्णु स्वरूप आत्मा भी जब तक नहीं निकलेगी तब तक देवता और असुर, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों मिलकर के एक माला नहीं बन सकती। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखलाए रहे। सिखला कौन रहा है? शिव बाबा। और किसके द्वारा सिखलाए रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा याद की यात्रा सिखलाए रहे। कौन से ब्रह्मा द्वारा याद की यात्रा सिखलाए रहे? याद की यात्रा सिखलाने वाले जो हैं वो प्रवृत्ति के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के होने चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए ना, क्योंकि मुरली में तो बोला हुआ है निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखला ही नहीं सकते। तो जब एक तरफ कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला सकते हैं, तो ब्रह्मा के लिए सरस्वती के लिए ये बात कैसे लागू होगी कि उन्होंने राजयोग सिखलाया और राजा बनाया? राजा बनाया कि और ये अधीन बना दिया? राजा बनाया या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन हो गया? कोई किसी की नहीं सुनता। प्रवृत्ति मार्ग का राजा रानी बनाया कि और ये दंड का मंडल धारी बना दिया? प्रवृत्ति मार्ग का कोई सेंटर दिखाई पड़ रहा है जहाँ प्रवृत्ति मार्ग का शासन चलता हो? इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा सरस्वती को प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर बहन है हाँ, माँ माँ और बेटी को कोई प्रवृत्ति थोड़ी कही जाएगी। चलो उनमें शिव बाबा तो था, ब्रह्मा के अंदर शिव था, शिव बाप तो था, उस आधार पर कह लो, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। प्रवृत्ति कब कहेंगे? जब वही ब्रह्मा सरस्वती की सोल कोई दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करके वो पार्ट चलता है। मुरली ने ही बोल दिया है कि ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। ब्रह्मा 60 वर्ष का बूढ़ा, तो कहाँ 60 वर्ष का बूढ़ा और कहाँ 14 साल की कन्या, तो प्रवृत्ति कैसे हो? दुगने का फर्क हो तो चल सकता है क्या? हाँ, राजाए हुए हैं बड़े बड़े और शादियां करते रहे तो चल सकता है, चलता रहा। एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी शादी करते हैं तो वो तो कम उम्र की होगी कि नहीं होगी? बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा मेरी पुरानी जूती है। भारतवर्ष में कहते हैं स्त्री हमारी जूती है, पांव की जूती। तो ब्रह्मा को पुरानी जूती बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि जैसे भारत में एक जूती जाती है तो दूसरी जूती ले लेते हैं, ये ब्रह्मा भी पुराना तन है ना, तो इसे क्या सारा दे दिया कि जरूरी ये पुरानी जूती खलास होगी तो फिर मैं नई जूती लूंगा। तो तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखलाए गए, डुप्लीकेट ब्रह्मा द्वारा नहीं, टाइटलधारी ब्रह्मा द्वारा नहीं, जो ओरिजिनल ब्रह्मा था उसी ब्रह्मा द्वारा फिर राजयोग सिखलाए गए। उसी ओरिजिनल ब्रह्मा द्वारा आज ने भी कराची में स्वर्ग की स्थापना हुई थी, प्रवृत्ति मार्ग के स्वर्ग की स्थापना आज में भी हुई थी, लेकिन वो था सैंपल, छोटा सा नमूना कराची में नरक के बीच सड़क का मॉडल बनाई दिया। और अब होना है राज रूप में प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखलाई गई, बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, अच्छा फिर क्या करो? याद करो। याद अक्षर तो बहुत सहज है, बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, लज्जा क्यों आएगी? इतना मीठा बाबा फिर भी हम याद नहीं कर सकते हैं, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाबा को हम याद नहीं कर सकते हैं, आपे ही लज्जा आएगी। ऐसे बाबा को तो हमने याद किया जिससे विश्व की बादशाही तो कुछ मिली नहीं, ज्यादा से ज्यादा सेंटर इंचार्ज बन गए, म्यूजियम इंचार्ज बन गए, जर्नल इंचार्ज बन गए, इससे ज्यादा बढ़कर के कुछ नहीं मिला। लेकिन जिससे विश्व की बादशाही मिलती है उसको याद नहीं कर सकते, तुमको लज्जा नहीं आती? बाप भी कहेंगे तुम तो मूर्ख हो, तुम बाप को याद नहीं कर सकते,
तुम बाप को याद नहीं कर सकते तो बच्चा कैसे पालेंगे? जब याद नहीं करोगे तो बच्चा नहीं हो सकता, विकर्म विनाश कैसे होंगे? विकर्म विनाश करने के लिए बाप की याद बहुत जरूरी है। जानवर भी बाप को याद करते हैं, जानवर भी अपने बाप को याद कर लेते हैं, तो तुम तो मनुष्य हो, तुमने इतनी मनन चिंतन शक्ति नहीं है जो तुम अपने बाप को पहचान करके बाप के जिस बात को विश्व की बातचीत का वर्तन मिले उसको याद करो। तुम तो आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ कि विनाशी हूँ? तो विनाशी को याद करते रहे, किसको याद करते रहे? ब्रह्मा को। ब्रह्मा किसका बाप है? अलौकिक बाप था ना, तो किसका बाप था? ब्राह्मणों का था ना, तो ब्राह्मण का किन ब्राह्मणों का बाप था? जिन ब्राह्मण को उसने गोद लिया, बच्चे को गोद लेकर के भी बाप बन जाते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं, होता किसी दूसरे का बच्चा है फिर उसको अपना बच्चा बना लेते हैं, फिर उसकी परवरिश करते हैं, तो वो उसका लौकिक बाप हुआ है न, क्योंकि ब्रह्मा बाप को तो याद किया, वो विनाशी था या अविनाशी था, तो विनाश हो गया। जब वो बाप विनाश हो गया उस विनाशी बाप को याद किया, जिसको विनाशी वर्षा मिला उसको याद करते रहे और मेरे उनके मिलिया थे मूर्ख हो क्या, इतनी भी अकल नहीं है। मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ, माना मेरा विनाश नहीं हो सकता, उसको कहते हैं कारण का काल, महाकाल, जिसको कोई काल है नहीं सकता, ब्रह्मा को काल आ गया। मैं तुम्हारा अविनाशी पिता हूँ, तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तुम चाहते हो कि हम पावन वन सुखधाम में जाएं, क्या कीमत है, चलो क्या चाहते हो सुखधाम में जाएं, कैसे धाम में, सुख के धाम में, मतलब शांति धाम नहीं जाना चाहते हो क्या है, सिर्फ सुखधाम में जाना चाहते हो, सुखधाम जाना ज्यादा अच्छा है या शांति धाम में रहना ज्यादा अच्छा है, दो बातें हैं, कोई तो शांति धाम में ज्यादा रहना पसंद करते हो और कोई सुखधाम में ज्यादा रहना पसंद करते हो, राजयोग सीखने वाले कैसे होते हैं वो सुखधाम में जाना ज्यादा पसंद करते, शांति धाम में जाने वाले वो मेरे सन्यासी नहीं है, जो सन्यासी की वृत्ति के होते हैं वो शांति धाम ज्यादा पसंद करते हैं, स्वर्ग सुख कहते हैं कि स्वर्ग के सुख का भी उसका समाज हमें नहीं है, ऐसे स्वर्ग के सुख चाहिए तो वो तो जाते हैं शांति धाम, और सुखधाम में वो जाते हैं जो पवित्र बन करके इसी जीवन में दिखाते हैं, अगर इसी जीवन में ये रक्षा बंधन नहीं बांधा, जो बाप डायरेक्ट आकर के बांधते हैं ब्राह्मण समझा भाई बहन आपस में नहीं बने, तो सुखधाम में इस शरीर से नहीं जाएगी, तो सावन हम सुखधाम में जाएं तो शर्त क्या है उसके लिए, सुनना तो करते लोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है दुनिया में, उसके पाठ को पहचानो और पहचान करके उसकी मत पर चलो, मेरी बात को याद करो तो तुम्हारे विकल्प बिना होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, जितनी विकर्म विनाश कब होंगे जब याद करें, किसको याद करेंगे, अविनाशी बाबा को याद करें, अविनाशी कैसे, इस शक्ति पर सदा काल है, अविनाशी रहता है क्या, तो संघ में बुरे आता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अविनाशी का, हाँ वो तो शिव बाप की बात है, वो शिव बाप तो साक्षी हो जाएंगे लेकिन ब्रह्मा बाप जन्म जन्मांतर के साक्षी हो जाएंगे, तो ब्रह्मा बाप में भी ब्रह्मा वो ऑलराउंड पार्टदारी नहीं है, लेकिन बाप तो ऑलराउंड पार्टदारी है, परम धाम में एक सेकंड के लिए जैसे जाना और तुरंत तुरंत वापस आना, तो ब्रह्मा बाप में भी ब्रह्मा वो ऑलराउंड पार्टदारी नहीं है, लेकिन बाप तो हर रंग पार्ट कर लिया। परम धाम में एक सेकंड के लिए जैसे जाना और तुरंत तुरंत वापस आना,